जिन दोस्तों में आप अपने अल्लाह दिन दोस्त बनाओ जिनके साथ गुजारो जिंदगी ज्यादा से ज्यादा उनके साथ रहो। अगर हम लोग न मिले तो जितना मौका मिल जाए किसी की दुकानें हैं उसकी कपड़े और वो आज आए भी तो उसका भी क्या है और कहीं ज्यादा सोना खरीद ली। और एक दोस्त ने बताया कि जब मैं दाढ़ी नहीं रखता था तो मेरे पास औरतें बहुत आती थी कहा बिल्कुल और जब से हमने दाढ़ी रख लिया तो हमारे पास औरतें अब नहीं आती कि दाढ़ी भी अल्लाह का एक बड़ा नाम है। दाढ़ी भी अल्लाह का एक नाम है जिससे औरतों ने उसको पीछा छोड़ दिया। एक मुश्त दाढ़ी पूरी एक मुश्त दाढ़ी रखो कटाओ मत। एक मुश्त रखना वाजिब है जैसे ईद की नमाज वाजिब जैसे बकरीद की नमाज वाजिब जैसे वितर वाजिब है। अगर कोई शख्स ईशा की चार पढ़ो जो सुन्नत पढ़े वितर न पढ़े एक शख्स ईद और बकरीद की नमाज नहीं पढ़ता बोलो ऐसे आदमी का इमाम रखोगे क्यों? क्योंकि वाजिब छोड़ दिया शाही रखना वाजिब नहीं। देखो शेख हदीस महाराज नकिया साहब ने एक रिखाड़ा लिखा जिसका नाम है गाड़ी का वजूद गाड़ी का वजूद सुहान अल्लाह वाजिब है। तो आज ईद और बकरीद के नमाज न पढ़े तो सारे लोग अरे यहाँ तुमने ईद की बकरीद भी नहीं पढ़ी वाजिब छोड़ दिया। लेकिन गाड़ी का वजूद छोड़ने का चूंकि एक माशरा बिगड़ गया अंग्रेजों ने ऐसा ये मरस फैला दिया कि आज इसको बुरा नहीं समझते वरना 10,000 अगर पार्टी वाले हों एक आदमी गाड़ी मिलाए तो देखो कैसी परेशानी होगी। लेकिन अब गाड़ी अब आदमी देखता है 10,000 मिलाने वाले हैं मैं उसने 500 आदमी गाड़ी रखे हुई तो वो सोचता है कि मैं अक्सरियत मजायती से हट कर ये अकलियत में जो चंद लोग गाड़ी वाले हैं मैं तो अकलियत में आ जाऊंगा। लेकिन यही साहब जो है जो अक्सरियत और मजायती देख रहे हैं ये अगर गौर करें कि खासदार लोग असलियत में हैं और अक्सरियत में गरीब लोग यहाँ मजालती की तरफ नहीं जाए चलो हम गरीब हो जाए अक्सर गरीब लोग अगर इनके मोहल्ले में दो कार वाले हैं और 100 साइकिल वाले हैं तो 100 साइकिल वालों की अक्सरियत में और उनकी मजालती में आना पसंद नहीं करें कि अपनी कार बेचकर साइकिल वालों में आ जाए भाई अक्सरियत में रहना चाहिए। दाढ़ी के मामले में तो ख्याल है अगर अक्सरियत रहो लेकिन मैं कहता हूँ दुनियावी मामले में आप अक्सरियत में नहीं देखो बोलो भाई आपने शानदार लिबास पहना हुआ है 500 रुपये का लिबास पहना हुआ और आपके बस्ती में 100 आदमी जो है आपके मोहल्ले में वो सब बेचारे 100 रुपये का लिबास पहने आप ये पसंद करते कि मैं उनमें आ जाऊँ। आपका मकान 500 रुपया गज का है बाकी बस्ती में आपके 100 रुपया गज पर रहते हैं ये पास वाला पसंद करेगा कि मैं अक्सरियत में आ जाऊँ। तो गाड़ी की दौलत होती इतनी क्यों खरीदों में आना चाहते हैं जो गाड़ी की दौलत से महरूम लोग हैं उनकी मजारती में जैसे दुनियावी दौलत से जो महरूम होता है उसके अक्सरियत में जाना पसंद नहीं करते। क्या शेर पसंद करेगा कि मैं लोमड़ी 1,000 है एक जंगल में एक अकेला शेर है और लोमड़ियाँ कितनी है 1,000 है तो क्या शेर से कहा जाए कि मैं आपको बड़ी अकलियत हो लोमड़ियों की अक्सरियत में आ जाओ शेर पसंद करेगा क्यों? शेर जानता है कि मेरी कीमत बहुत ज्यादा गाड़ी वालों दोस्तों अगर तुम कम हो तादाद में तो अब तुम्हारी कीमत बहुत ज्यादा है कयामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें देख कर खुश हो जाएंगे उस वक्त तुम्हारी गाड़ी की कीमत मालूम होगी। हालांकि आप गाड़ी की कीमत बयान करते हैं तेरे महबूब की आदत शराहत लेके आया तेरे महबूब यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे महबूब की आदत शराहत लेके आया शराहत माने शक्ल तेरे महबूब की आदत शराहत लेके आया हकीकत इसको तू कर दे मैं सूरत लेके आया जो कहते साहब कि मैं इज्जत नहीं मिलेगी मैं कहता हूँ जो इज्जत इंशाल्लाह गाड़ी में मिलेगी बीवी भी आपसे दुआ नहीं कराएगी हाँ बीवी कभी हालांकि जानती है बजाय उसकी नस खुश भी हो जाए तो मेरा शौहर गाड़ी मिला हुआ है तो इसके गाल जरा चिकने छिकनेंगे नस को खुशी होना और है और रूह का खुश होना और दोनों में फर्क आजमक नस गुनाह से खुश होता है लेकिन रूह परेशान रहती है नस और रूह एक चीज थोड़ी है वही बीवी नहीं अगर उसको कोई मुसीबत बीमारी आ जाए तो अपने दाढ़ी मनाने वाले शौहर से जो आपकी दरखास्त कर लेंगे उसको मजा नहीं आएगा तो कहीं जाओ आरी साहब से हाफिज जी से मोदी साहब से पीर साहब से दुआ कराओ भाई शौहर साहब उनसे सवाल कर लें कि भाई तुम तो कहती थी तुम्हारे दाढ़ी मुंडे भी गाल से मुझे बहुत लुत्फ रहता है और आज दुआ की भी तुम मुझसे नहीं कहती मैं क्या दुआ कर रहा हूँ तुम्हारी दुआ कबूल भी होगी तुम तो हजूर सलाह सलम की सुनत पर अस्तुरत रहते हो हजूर का बाप म्यूनसिपलिटी कारपोरेशन के बाप को काट ले तो चालान मिला और तुम हजूर सलाह सलम के बाप पर अस्तुरा चलाते दुआ नहीं कराएगी वो कहे कि जाओ दुआ कराओ फलाने मौलाना साहब और अगर आपने सुना कि भाई आपने मीरपुर में मालूम था एक बहुत बड़े पीर साहब आए हैं उनकी दुआ कबूल होती है लेकिन जब आप पहुंचे तो पत्थरों रटाई लगा दी गाड़ी मौत सबकी हुई और सिर को सीघा भी है सीघा लकड़ी का होता उसकी तंबा को मुंह गहरा करके कष्ट मार रहा है बोलो आपका वो ख्याल सही रहेगा कि पीर है अरे यार तुम लोगों ने क्या खबर देखी तो बिल्कुल कुछ और ही निकला एवन क्लास का रीजन तो मालूम हुआ कि आज उम्मत खुद चाहे गुनहगार हो उम्मत खुद गुनाह करे लेकिन उस गुनाह के आदि से वो दुआ नहीं कराती हालांकि आदमी खुद ना रहा था लेकिन दूसरे दाहे बनाने वालों से दुआ नहीं मांगता जानता है कि मैं भी मुझे ये भी मुझे तो दोस्तों ये दाहिनी लोग सुन्नत कहते हैं आज लोग खाली सुन्नत कहते हैं वाजिब को भी सुन्नत कह दिया जाता है हुजूर कहा तरीका सुन्नत है भाई नमाज फर्ज है हुजूर की सुन्नत है हुजूर पढ़ती है लेकिन असल में वाजिब है जितना कि ईद और बकरी वाजिब लेकिन दाढ़ी रखने में फायदा भी बहुत अभी आपको बता दिया कि एक साल में मेरे बुखार में कमरे के ताजिर हैं उन्होंने हमसे कहा कि जब हम दाढ़ी बनाते थे तो मेरे पास औरतें ग्राहक बहुत आते थे और जब से हमने दाढ़ी रख ली तो औरतें खत्म हो गई मर आने लगे लेकिन क्या भूखों मर गए माशाल्लाह अभी खा पी रहे सिर्फ ये है कि अब औरतें अपने मर्दों को भेजती हैं क्योंकि जान गई कि वो मर्द हो गया है हमारी शक्ल जैसी शक्ल नहीं रही उसकी अब अपनी हम शक्ल के पास जाते थे पहले अब वो कुछ शक्ल हो तो मारा वो तो कुछ हमारा बन गए मर्द तो मर्द आने लगे मर्द के पास मर्द आने लगे तो इस किस्म की शक्लों से ये खतरा होता है आप देखिए एक मुश्क दाढ़ी रखो और हर तरफ से रखो इधर से भी वाजी इधर से वाजी लेकिन उसको कम ही करके पेड़ लगा कर रखो ऐसे करके रीस मगुन शरीयत कहती है कि जमाल से रखो खुश्क से रहो पानी में पेड़ लगाओ सरसों का चमकदार दाढ़ी और उसमें कंगी भी करो और एक मुश्क राजू काटो इतनी बड़ी में न रखो कि बम्बई में एक आदमी दाढ़ी बढ़ाते बढ़ाते नाक के नीचे तक ले गया और जब पेशाब करने बैठा तो दाढ़ी को बगल में लगाया बगल क्यों करके बगल में लगा तो पेशाब को और पेशाब की धार पड़ जाती ऐसी दाढ़ी रखना भी गायत्री हराम एक आदमी का मजा एक मुश्क बुजुर्ग शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखा है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर से मरफू रिवायत कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुश्क के बाद काटते थे लिहाजा असल सुन्नत एक मुश्किल है लेकिन अंगुल जो अंगुल कोई बड़ी बड़ी रखे हाजी है मुश्किल है इन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं लेकिन तीन अंगुल से ज्यादा न बढ़ने दो और सबसे असल तो यही आम लोगों के लिए एक मुश्क होती है एक मालूम होती है मैंने मुश्किल ऋषि अहमद साहब को देखा एक मुश्त से जरा भी बढ़ने नहीं देते जरा सी बढ़ी तो बिल्कुल शिडोल करके आ गए माशाल्लाह इतना अच्छा मालूम है जमाल भी है सुन्नत में जमाल भी है तो दाढ़ी में अल्लाह ताला ने गुनाह से बचने का एक रास्ता भी रखा दाढ़ी रखने वाले को शर्म भी रहती है कि भाई लोग क्या कहेंगे जिसको दाढ़ी रखते हुए सिनेमा भी लाइन लगा हुआ हर गुनाह में दाढ़ी वाला समाता रहता है तो शैतान चाहता है कि ये शर्म वाली चीज न रखने पाए ताकि ये आजादी से गुनाह कर लेकिन इसको अगर हिम्मत से रख लिया जाए तो इज्जत होगी इंशाल्लाह बीवी तो दुआ कराएगी आपके मातहत भी दुआ कराएगी बल्कि आपका ऑफिसर दुआ कराएगा आप लोग कहते हैं ना इज्जत नहीं मिलेगी मैं तो ऑफिसर ग्रेड में हूँ वहां मेरा रोग नहीं रहेगा कहेंगे ये मुल्ला है मैं आपसे यकीन से कहता हूँ इंशाल्लाह आपका रोग दूसरों से ज्यादा होगा और ऑफिसर जो आपका जनरल मैनेजर भी है डायरेक्टर जनरल भी है वो भी आपसे दुआ के लिए कहेगा अगर उसको मालूम हो जाए कि मेरा माता है तहज्जुद गुजार है अल्लाह वाला है खाली दाढ़ी ही दाढ़ी रखे इस मुहिम भी करो और झूठ भी बोलो और दुनिया भर के खुराफा को दाढ़ी की इज्जत भी रखो अच्छे अमाल भी रखो इंशाल्लाह तो बड़े अफसरान भी दुआ कराएंगे वो भी दुआ मांगेंगे भाई आप मेरे लिए दुआ की मैंने ऐसे लोगों को देखा देखो हमारे पास इस वक्त एक दोस्त है इंतजाम से आया हुआ है उसके अफसरान दुआ कराते हैं तो मालूम ही हुआ कि अल्लाह ताला ने देखो एक मौलाना मेरे शेख मौलाना शाह साहब लाभ ने फरमाया कि पुलिस अगर अपनी वर्दी में न हो, पुलिस अपनी वर्दी में न हो और वो चौराहे पर हाथ दिखा रहा हो सलवार कुत्ता पहने हुए कोई ट्रेफिक वाला रोकेगा उसको और एक औरत भी कार चला के जा रही है कहरा अरे क्या क्या कर रहे हो जाओ आलू बेचो यहाँ काम करो वर्दी न होने से उसका रोग ही रहेगा। मुसलमान की वर्दी है गाड़ी इस्लामी वर्दी, अगर आप अपनी वर्दी में नहीं रहेंगे आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी। पोस्टमैन आए ना खाने वाला और वर्दी बदल क्या है बल्कि पुलिस की वर्दी पहनकर आए तो रोग तो आएगा किसी भी मूल आप करेंगे खुदा फैसले क्या बला आदमी उम्मीद रहे कि बने आदम ला रहा हूँ तो महबूबियत भी खत्म हो जाती है। इस वर्दी में अल्लाह ताला ने रोग भी रखा है महबूबियत भी रखी है जमाल भी रखा है और चेहरा बारोग भी रहता है आधा चेहरा तो दाढ़ी में उतर जाता है। बोलो भाई एक एक मुच्छी जो थी आपका गाल मुच्छी भर हुआ एक मुच्छी उस पर दाढ़ी है तो दो मुच्छी गाल रोग था चेहरा का और आपने आधा काट के फेंक दिया तो क्या रह गया चेहरा आधा होगा रोग भी खत्म हो जाता है। ये आजकल मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ अक्सर हो रही हैं उसकी वजह एक और ये भी है उसमें एक गुस्सा मुझसे आ रहा है जो एक मुझे गाड़ी रखे हुए है अपने किसी रिश्तेदार दोस्त के पास मिलने के लिए तो उनका बच्चा आपकी गाड़ी देख कर रोने लगा रोज बैठा उन्होंने कहा देखो भाई मेरे साथ गाड़ी ऐसी सी रही देखो हमारा बच्चा रोने लगा कहने लगे बच्चा गाड़ी से थोड़ी रोया है बच्चे को ये मालूम है कि आज अब्बा से मुलाकात हुई तुमको देखकर और अम्मा को देखकर तो फर्क ही नहीं करता था गाड़ी देखकर आज उसे पता चला कि आज अब्बा से मुलाकात हुई इसलिए रोक पड़ गया उसका डर रहा है और आपको तो अम्मा में और अब्बा में फर्क ही नहीं चाहता था। वो मोदी साहब ने मजाक ये लतीफे की बात है एक महिला कर रहा था ऐसी टखने से नीचे पैजामा करना हम लोग समझते हैं कि मामूली गुनाह है। चार किस्म का आजाद मुस्लिम शरीफ जो बुखारी शरीफ के बाद सबसे बड़ी हदीसी किताब मुस्लिम शरीफ है चार किस्म का आजाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो पैजामे को टखने से नीचे करेगा उससे अल्लाह ताला उसको अल्लाह ताला कयामत के दिन उससे बात नहीं करेंगे। इन अल्लाह लाइसलम योम कयामत अल्लाह को कयामत के दिन कलाम भी नहीं करेगा यानी रहमत का कलाम नहीं सुनाएंगे नजर रहमत से न देखेंगे और उसको काट भी नहीं करेंगे और उसके लिए अलग नहीं होगा बात न करने के क्या मफहूम लाइजक की ही अल्लाह उसको पाक नहीं करेगा इसका मतलब क्या है समझो इसके मतलब की तलाश में मुझे बहुत फिक्र करनी पड़ी। अब वो दाऊद शरीफ की शरह बदू मजबूत देखी तो मौलाना अली अहमद सहारन पूरी रहमत ला रहे हैं फरमाया कि लाइजक की ही यानी तुम्हें गुनाहों के मैं कुछ ऐसे खुदा पाक नहीं करे फिर भी हमें पूरी तसल्ली नहीं है। एक दिन बयान कुरान देख रहा था तो हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह सुनाते हैं कि बोला अल्लाह की मनीषा लेकिन अल्लाह जिसको चाहता है पाक कर देता है तो तफसीर में फरमाते हैं यानी अल्लाह ताला तौफीक के तौबा देकर अल्लाह ताला तौफीक के तौबा देकर अपने बंदों को जिसको चाहते हैं पाक कर देते हैं तो मालूम हुआ कि ना पाक करेगा कहने से नीचे पैदाना करने वालों को क्या मतलब हुआ लाइवर से ओहम लिख तौबा यानी उनको तौफीक से तौबा न देगा। आज बयान करार अगर न देखता तो मैं इस हदीस को मैंने बहुत ही बेचैन था कि ये क्या मतलब इसका जब देखो मेरे दोस्त तो ऐसे ही आजकल आज तक बात को याद आती कि अपनी खालाजात बहने हैं चचाजात बहने हैं छुट्टी जात बहने हैं अपने सगे भाई की बीवी से खूब घर सब लड़ा रहे हैं कौन सा है अभी इस शाख पर से आ रहे हैं बस इस जी और बड़े मोटे मोटे दाने की तस्वीर ये चले आ रहे हैं और दाढ़ी भी शरीर है पहलावे भी टपने से ऊपर है लेकिन भाव साहबा से गुफ्तगु हो रही पूछा हजूर सल्लाह सलम ने क्या फरमाया इधर एक सहाबिया ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मैं अपने सगे भाई अपने शौहर के सगे भाई से अदा है उसके लिए क्या हुक्म है आपने फरमाया कि शौहर का सगा भाई मौत को मौत यानी जितना मौत से डरती है तू उतना उससे शौहर के सगे भाई से करो पर्दा उससे करो और कोई कैसा हमारा तो बड़ा छोटा सा लाल इतने 80 गज का हम दो भाई रहते हैं कहाँ जाएंगे इतनी गुंजाइश नहीं कि हम अलग मकान लें, भाई भाई से बहुत गुजरा है तो सुखार के आए, दुपट्टा गुजरा बाहर हो, दुपट्टा मोटा हो, बाल बदलना है, बाल का देखना आराम है, चाहे 150 की गुर्जा हो जाए, 150 बरस की, बालों का पर्दा कभी खत्म नहीं होता, चाहे जितना ही उम्र हो जाए, लिहाजा एक मोटा दुपट्टा चेहरे को छिपा लिया, भाई इतना नहीं तो सकता कि कर लिया, आवाज देखिए आ रहे हैं, और एक भाई साहब ने तो कमाली कर दिया, एक भाई अपने भाई से मिलने गए तो उन्होंने कंकन तंदूरी जमात में या किसी गुरु से मसला सुन लिया था, तो अपनी बीवी से कहा था पर्दे में हो जाना, मेरा भाई आ रहा है, जब भाई साहब कमरे में बैठे थे कहा हमारे भाई कहाँ है, पहले भाव साहब आके सलाम करती थी, हाँ हूँ होती थी, हम लोग उसने पूछा कि मेरी भाव कहाँ का भाव तो पर्दे में है, कहा अच्छा आपने मुझे गैर समझा है, मैं नहीं आता, मैं ऐसे भाई को भाई नहीं समझता जो हमें गैर समझता, गैरों की तरफ हमने बैठा दिया, अंदर घुसने भी नहीं दे रहा, तो उसने कहा कि भाई मैं आपका भाई हूँ, मैं तो बैठा हुआ हूँ, आप भाई से मिल जाएगा और भाई की बीवी से मिल जाएगा, तुम्हारा भाई तो मैं हूँ, अगर आप भाई की मोहब्बत में आए हो तो मैं तुम्हारे पास हूँ, कमरे में हूँ, खाना लाऊंगा, पानी पियो, सब खिदमत करूंगा, खान तंबाकू जो खातिर तौर हो, ये क्या मतलब है इसके मानिए कि तुम, यानी मैंने अपनी बीवी को तुम्हें नहीं दिखाया तो तुम भागे जा रहे हो, फिर भाई हमारा भाई नहीं रहा आप, तो मालूम हुआ कि भाई से मोहब्बत नहीं थी, हाँ भाई को तो पा गए मगर तसल्ली नहीं हुई, अगर भाई से मोहब्बत होती तो भाई को बैठा है, तुम्हारा नफ्स बदमाश, तुम मेरी बीवी से बेपर्दा बात करना चाहते हो, न भाई से मोहब्बत होती तो मैं तो भोजूँ, ज्यादा कहा मैं ऐसे नालायक भाई से नहीं, जाओ भाग यहाँ से, तुमको अगर मुझसे मोहब्बत नहीं करनी है पर्दा हम बेपर्दा नहीं लाएंगे अपनी बीवी को, ईमान यकीन जब बन जाता है तो अल्लाह के गज़ब नाराजगी के मुकाबले में सारी दुनिया को नाराज करता है मुसलमान, ये मकान ईमान का हासिल करो दोस्तों, ये सोहबत से मिलेगी, किताबों के पढ़ने से ये ईमान नहीं मिलेगा, किताब में लग पढ़ोगे सब कुछ जानते सब कुछ हो, लेकिन जरा देखा कि फलाना नाराज हो जाएगा, भाई फरार हो जाएगा, चचा ऐसा हो जाएगा, खानदान वाले छोड़ देंगे, खानदान वालों ने धमकी दे दिया कि अगर गाना बाजा शादी में नहीं लाओगे, नाच नहीं कराओगे और रिकॉर्डिंग नहीं कराओगे तो हम शादी में शरीक नहीं होंगे, आप डर गए बेचारा, तेरे खानदान छूट रहा लाखों लड़ाकों के लड़ने को, ये क्या मुसलमान है, अरे ऐसे खानदान को तो एक लाख तुम मारो और ऐलान करो जो खानदान आज मेरे गाना बजाना छोड़ने से, शैतानी कामों को छोड़ने से हमारी शादी में शरीक नहीं होगा, मैं नहायत खुशी से तैयार हूँ उसके लिए, तो हमको छोड़ दे, सारा जहाँ खिलाफ को करवाना चाहिए, पेशे नजर तो मर्जी जाना न चाहिए, सारा जहाँ खिलाफ को करवाना चाहिए, पेशे नजर तो मर्जी जाना न चाहिए, अब इस नजर से जांच करके कर तो फैसला क्या क्या तो करना चाहिए क्या क्या न चाहिए, तू साहब ये बताइए अगर आपसे थानेदार नाराज होता है और एक तरफ चौकीदार नाराज होता है मामूली पुलिस, आप किसकी नाराजगी से करेंगे, एसपी डीआईजी बल्कि गवर्नर अब्बासी या कमांडर चीफ पूरे फौज का मतलब माशाल्लाह लगा हुआ वो देखो कि आपसे पर आपसे नाराज होता और एक कांस्टेबल थानेदार नाराज होता है, वो लोग क्या करूँ, यही समझ लो कि एक मन का आदमी कमजोर टीबी का मरीज वो आपसे नाराज हो गया, टीबी का मरीज है कि आप एक घूसा मारे तो गिर पड़े वहाँ बेहोश हो जाए, और चार मन का मोहम्मद अली किले या भोलू पहलवान आ गया और वो नाराजगी करते बताओ किससे डरोगे उस वक्त, किसको राजी करोगे, चार मन वाले ताकत वाले हो ना, तो अल्लाह ज्यादा ताकत वाला है या खानदान ज्यादा ताकत वाला है, फैसला करो ये बिरादरी और खानदान ज्यादा ताकत वाली है, अगर हिम्मत कर लो कि हम अल्लाह को नाराज नहीं कर सकते और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं छोड़ेंगे, हम पर्दा शरीर के साथ शादी ब्याह और हुजूर की सुन्नत के मुताबिक रहेंगे, तो इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि यही खानदान आपकी जीतियाँ उठाएगा, जब अक्सर अपने गाड़ी रखी गाड़ी शुरू से रखी अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर से ताल्लुक कायम किया और अपने खानदानी रस्म रची बिरादरी वाली छोड़ा तो सारा खानदान उसे नाराज हो गया, और सब कहा तो मुल्ला हो गया और ये हो गया और अब गाना बजाना सब बंद कर देगा और ये कर देगा कर देगा, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि 76 में जब पाकिस्तान से मैं गया अपने बिरादरी में तो मेरा आवाज सुन कर हर शख्स रात मेरी मुझसे दुआएं मांगने के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं, और इतनी इज्जत किया कि अपने वो लोग जो उनके बहुत बड़े बड़े मौजूद बड़े बड़े जमींदार उनकी कोई इज्जत नहीं, इस मुल्ला की कोई इज्जत नहीं। लोगों मैंने कहा दोस्तों एक दिन वो था कि तुमने हमें ये समझकर अपने खानदान से निकाल दिया, लेकिन अगर हम अल्लाह को राजी रखते हुए अल्लाह वालों की जूतियों से उठाने की बरकत से हमें अल्लाह ने हिम्मत दी, आज तुम हमसे दुआएं करा रहे हो और आज समझ गए कि हक किस तरफ है। याद रखो अपने मालिक को नाराज करके अगर गुलामों को खुश कर लिया चंद आजिजों को घाटे में रहो, अगर जंगल में एक हिरन के साथ 1000 जानवर हैं गौमड़ी उसके साथ मुसाफ महाराणा जी भी फरमाते हैं कि 1000 चूहों ने मीटिंग की कि एक बिल्ली ये बिल्ली हम लोगों को खा जाती है, लिहाजा हम लोग इतनी तादाद में हैं 1000 तादाद में हैं तो हम क्यों ना एक बिल्ली पर हमला कर दें। और आपस में मशवरा हुआ कि कान कौन चबाएगा, एक ने कहा मैं कान चबाऊंगा दाहिनी तरफ वाला, दूसरे चूहे ने कहा मैं दाएं तरफ वाले कान पर हमला करूंगा, तीसरे चूहे ने कहा कि मैं जरा किसी हकीम के यहाँ से समीरा मौके का चार्ज कर विटामिन बी कम्प्लस मेडिकल स्टोर से कुए वाले कुए रहता था उसने कहा मैं विटामिन बी कम्प्लस पी के आऊंगा, किसी ने कहा मैं बादाम बनिए क्या रहता हूँ जहाँ जनरल स्टोर बादाम किशमिश मैं बादाम खा के आऊंगा, गांधी जी सब ने अपनी ताकत का है वो ऐलान किया और कहा मैं इस तरह से मछली चला डालूंगा, किसी ने कहा मैं दुम पकड़ लूंगा, किसी ने कहा मैं उसके सीने में सुराख करके उसका दिल चला डालूंगा, सब एक सारी मीटिंग हो गई और हमले का पूरा निजाम बन गया। उसके बाद जब वही 40 दिन की बुखार में उतरा बिल्ली जिसकी हड्डी हड्डी नजर आ रही थी और कमजोर भी सी बेचारी न्यो भी उसकी आंख बहुत मामूली सी हो गई थी, लेकिन उसने जब एक ये हमला करने पहुंचे तो महाराज अलवी रहमतुल्लाह अलैह मसनवी शरीफ फरमाते हैं कि 1000 चूहे जब पहुंचे उस बिल्ली की तरफ हमला करने के लिए तो उसने आहिस्ता से कहा अरे साहब ऐसी भगदड़ मची है कि अपनी अपनी भीड़ों के रास्ते एक एक दिन में 3-3 चूहे घुस रहे हैं और उनके खाने छिड़ रही हैं, अपने रगड़ा रगड़ी हो रही थी कुछ दिल की सुराख तो खुल और ये विटामिन खा खा कर रहे हो गए, लेकिन जब एक एक दिन में 3-3 चूहे भागने लगे हैं तो जनाब वही हुआ कि वो भागने का रास्ता मिलना मुश्किल हो गया। तो महाराज भी सुनाते हैं कि देखो है अल्लाह की नाफरमान शरीयत समझ देखो इनके साथ अल्लाह की ताकत नहीं है, तुम अल्लाह के साथ हो अल्लाह के तुम्हारी ताकत अल्लाह के साथ होने से है इंशाल्लाह सारे जमाने पर छा जाओगे। कल हमारे मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह मुफ्ती शफी साहब ने का शेर याद आया कि हमको बता सके ये जमाने में दम हमसे जमाना खुद है जमाने से हमने हमको जमाना कैसे निकाल सकता है, जमाना कोई खालिक है कोई खुदा है जमाना कैसी है। तो मेरे दोस्त को मैं ऐसा रहा था कि हिम्मत से काम लो खानदान वालों को इतना कर दो यहां से मेरी बीवी पता करेगी मेरे भाई खालाजाद मामूजाद चचाजाद जो आएंगे कश्मीर से या हजारे से या पंजाब से वो मेरी बीवी को बराहरास बात पर नहीं देख सकते, खत लिखो उनको सबको इतना करो कि आज से मैं अल्लाह और रसूल का गुलाम और उनकी फरमा बरदारी का मैंने इरादा किया है, मैं आप पर अपनी जान माल और इज्जत किस हैसियत से कि आप मेरे रिश्तेदार हैं मेरा खून है आप मेरे चचा के बेटे हैं आप मेरी इज्जत मेरा माल मेरा जान सब हाजिर आपकी, लेकिन अल्लाह को नाराज करके मैं आपको खुश करने से माजूर हूँ क्योंकि खुदा की आदाब से आप हमको बचा नहीं सकते खबर में मैदान नशर में और दोजख के आग से, लेकिन इंशाल्लाह अगर उनमें इंसानियत है अगर थोड़ी सी भी शराफत है तो आपके बात को मानेंगे वो और कहेंगे भाई अगर हम नहीं अमल करते हमारा एक भाई अल्लाह वाला बन रहा है उसकी मदद करो, और अगर ऐसे कोई शैतान है, उसने खत पर लिख दिया कि जाओ फिर अगर हमसे पर्दा कराते हो तो हम फिर तुम्हारे पास मिल जाएंगे तो आप इससे कहो कि 1000 सलाम आपको दिल खुश वक्त हो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह के लिए कुछ लोगों से कटना भी तो नसीब हुआ, अल्लाह से जुड़ना तो सबको आता है अल्लाह के लिए किसी से कटना भी तो सीखो ताकि अल्लाह को ये मालूम हो कि मेरा बंदा मेरी मोहब्बत में किसके किसे कटा, इंशाल्लाह वो झुके रहेंगे एक दिन ऐसा आएगा उनको झुकना पड़ेगा उनकी अकल भूसा खत्म हो जाएगी, मतलब ऐसा आजाद पकड़ेगा अल्लाह को ऐसे लोगों को अल्लाह नहीं छोड़ता जो खुदा के कानून के इज्जत को बरकरार रखे रहते और किसी बंदे को मजबूर कर देंगे नहीं आपको इतना करना पड़ेगा, ऐसे शख्स को मुश्किल है जान बचना कुछ ही दिन में देखना उसकी भैंस भी मरेगी उसकी बकरियां भी मरेंगी, उसकी बीवी भी मरेगी, बच्चे भी मरेंगे, क्या क्या आधार आता है अगर तवा रख दिया। फिर उसी मुल्ला से यहाँ जोड़ेगा ऐसा, थोड़े दिन का इम्तिहान होता है, थोड़े दिन का इम्तिहान होता है। तो मैं ऐसा रहा था कि दोस्तों जिस तरीके से मस्जिद में हम तस्वीर इशाक अल्लाहीन और तबीयत के चिल्लों में जाते हैं, जो कितने दुआएं सीखते हैं, लेकिन जब अपने खानदान में आते हैं, बिरादरी में आते हैं, दुकानों में आते हैं, घरों में जाते हैं, वहां भी अफवाह बिछाता और वहां भी अपने रिश्तेदारों से जिनसे पर्दा करना है, उन माँ बहनों से जिनसे पर्दा करना है, उनसे आंखों को नीचे रखती है। कि हुकूमत मौलाना शफी साहब खानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स किसी औरत को देखकर या किसी हसीन लड़के को देखकर अपनी टोपी को दुरुस्त कर लेता, जैसे कोई औरत कहाँ आई, अभी तो टोपी टेढ़ी मेढ़ी थी, अब कोई औरत आई तो गाय घूम कर देगा ठीक कर लिया बालों वालों को है, और शीशा भी देख लिया जल्दी से बताई। एक हाफिज कुरान अभी उम्र भी 22 साल और गरीब आदमी नौकरी के लिए आए, बहुत दूर से दूसरे मुल्क से आए और पास शीशा इतना बड़ा, यदि छोटा मोटा होता तो इतना बड़ा शीशा, और हर वजू के बाद शीशा देखा जाता, कमजी हो रही। अरे भाई शीशा पांच वक्त देख लिया होता ना कि नमाज पांच वक्त पढ़ने का, पांच वक्त शीशा देख। मैंने कहा दिया तो मैं तो बस किसी फितने में तुम मुबतला हो जाओ, तुमको अपने हुस्न पर नाज है, थोड़ा सा चेहरा भी ना हसीन था उनका, तुमको अपने हुस्न पर नाज है लेकिन तुम गुनाह में मुबतला हो जाओ, हर वक्त शीशा देखना हो, बालों को दुरुस्त करना, अरे अल्लाह की तरफ नजर रखो, थोड़ा बहुत कभी कभी कर लिया देख लिया, नतीजा यही निकला कि बाद में मालूम हुआ कि वो गुनाह में मुबतला हुई, पकड़े गए, विदाई पे इसी कराची, और फिर कहते हैं तो ये क्या हुआ। अल्लामा अबूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के सूरह यूसुफ की तफसीर में कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कितना हुस्न दिया है कि आधा हुस्न, एक रिवायत में अल्लाह मौलाना जलालुद्दीन रूमी लिखते हैं कि आधा हुस्न अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता किया। आदमी फरमाते हैं जब यूसुफ अलैहिस्सलाम चलते थे जिस गली से तो उनके चेहरे की रोशनी घरों के अंदर दाखिल हो जाती थी, उस लाइट से लोग समझते थे कि यूसुफ जा रहे हैं, जैसे सूरज का किरण नहीं दाखिल हो जाती घर के अंदर रोशनी, और दूर पहाड़ की कजल्दी के बाद दूध का हुस्न और बढ़ गया। जब दूध कजल्दी पहाड़ की दूर पर अल्लाह की जलवा नजर आया तो उसको चेहरा जलवा घुस गया चेहरे, और आप लाइट तेज हो गई चेहरे में लिखा है, जब जलवा दूर का देखने के बाद अल्लाह ने हुक्म दिया है मूसा अब आपका चेहरा कोई बगैर पर्दे की नहीं देख सकता, और लोहे का पर्दा भी डालोगे है तो मेरा नूर उसको सुराख कर देगा, बाहर निकल जाएगा, लिहाजा जिस कम्बल में आपने जलवा मेरा देखा उस कम्बल को टुकड़े से चेहरे पर नकाब डाल लो, क्योंकि वो मेरा एक दफा देखकर उसके अंदर ताकत बर्दाश्त किया है। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहेतूर पर जिस लिबास में थे कम्बल के लिबास में उस कम्बल को थोड़ा थोड़ा काटकर चेहरे पर लटका लिया। अब जब आए तो बीवी ने पूछा ये क्या तमाशा, आपका चेहरा देखकर नबी का चेहरा देखकर बताता ही नहीं भाई, बोलो जब बोली अल्लाह का चेहरा देखकर बताता है, हुज़ूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि और अल्लाह वाले औलिया अल्लाह वो है जिनको देखकर खुदा याद आ जाए, औलिया अल्लाह वो है इज़ा रूह ज़िक्र अल्लाह, अल्लाह वाले वो है जिनको देखकर खुदा याद आता है, तो नबी को देखकर कितना खुदा याद आ रहा है। हज़रत सफ़ूरा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि बीवी ने कहा कि अरे मेरे प्यारे शोहर हज़रत मूसा ने तुम्हें बगैर देखे कैसे क्या पर्दा हो गया कैसा कर लिया, उन्होंने कहा कि आप तुम बगैर पर्दा मुझे नहीं देख सकती। हज़रत रूमी रहमतुल्लाह अलैह बताते हैं कि उन्होंने कहा हम तो देखेंगे बगैर देखे तो हम जिंदा नहीं कर सकते कि अल्लाह के महबूब नबी को अल्लाह को तो यूं देख नहीं पाते, अब अल्लाह के महबूबों को भी ना देखें तो कैसे जिंदा रहें। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत डरा है कि आपकी रोशनी खत्म हो जाएगी, तो लाइट बहुत तेज हो गई मेरे चेहरे पर अल्लाह का जलवा, पहाड़ तो टुकड़े टुकड़े हो गए, और पहाड़ के टुकड़े टुकड़े होने पर भी महाराज ने ऐसी बात ध्यान की, और मुहसरीन ने तो लिखा कि पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सका, महाराज ने बनाया कि दो वजह थी, बर्दाश्त भी नहीं कर सका लेकिन बर्दाश्त न करने की वजह कमजोरी नहीं थी, खाली कमजोरी नहीं थी बल्कि एक वजह यह थी वो आशिक था, वो टुकड़े टुकड़े इसलिए हो गया कि अल्लाह का नूर मेरे अंदर आ जाए, कलेजे में दाखिल हो जाए, पारा शुद्धा था गुरु ने छंदर टुकड़े टुकड़े इसलिए हो गया कि मेरे अल्लाह का नूर ऊपर ही ऊपर न रह जाए मेरे अंदर आ जाए। क्यों भाई बोलो मेरा क्या चाहता है, जब भूख खूब लगी हो बिरयानी खाली मुंह में अंदर दाखिल हो तो वह होश रहा, पहाड़ को उसका बातिन जो था आशिक था अल्लाह, टुकड़े टुकड़े हुए। तो मौलाना रूमी सुनाते हैं कि वो बीबी सफूरा ने कहा कि हम तो देखेंगे ज्यादा, उन्होंने पहले एक आंख दबा के देखा एक आंख, फिर एक आंख से देखा तो रोशनी खत्म होगी, रोशनी खत्म होगी, लिहाजा जब रोशनी खत्म हो गई तो दूसरे हाथ से भी देख दिया उसी वक्त। तो अल्लाह ने पूछा कि आए सफूरा, जब तेरी एक हाथ की रोशनी खत्म हो गई थी, तूने तजर्बा भी कर लिया था, फिर अपनी दूसरी हाथ क्यों नहीं बताया तुमने? उसने कहा, सफूरा ने कहा, ऐ खुदा तेरे इस पैगंबर का नूर खुद इतना प्यारा था, लेकिन तेरा जलवा देखने के बाद तो आपका भी नूर का मजा डबल नूर, नूर नला नूर, नूर नबूत और अल्लाह का नूर, इतना मजा आया कि मैं अपने हाथ की परवाह न की। अब बल्कि फरमाया मालूमी ने उसको सफूरा अलैहिस्सलाम ने कहा खुदा से कि उस हसरत में खुदा की सब हजार, ऐ खुदा मैं तो तमन्ना करती हूँ कि सौ हजार आंखें मुझे और अता हो जाती कि सौ गुस्त हसरत में खुदा की सद हजार लीला हो दे रही करदम निसार, सौ हजार आंखें मुझे अगर मिल जाती यानी एक लाख, तो मैं इस आपके पैगम्बर को देखने पर मैं उसे कुर्बान कर देती। देखा ये जब अल्लाह का मजा आ जाता है आदमी को तो वैसे ही होता है, लाख कुछ होता रहे, उसे लाख चुहाते रहे, मुल्ला है मुल्ला है, लाख है जो अल्लाह वाला होता है, जितने ही उसको लोग चुहाते हैं उसका ईमान और तेज होता है। दुश्मनी खल्क रहमत हो गई, बढ़ गया उनसे ताल्लुक और भी। हर आदि रसूल साहब के शेर है रहमतुल्लाह, बढ़ गया उनसे ताल्लुक और भी, दुश्मनी खल्क रहमत हो गई। तो अल्लामा ऋषि रहमतुल्लाह सुनाते हैं सूरह यूसुफ की तफसीर में, जिसको अल्लाह ने हुस्न अदा किया, मन हसन अल्लाह खल्क़हु, जिसको अल्लाह ने हसीन पैदा किया, फला युसव्विहु बिलमासियत, वो शख्स अपने चेहरे को बुरा न करे गुनाह करके, बस शक्ल न करे, मालूम हुआ गुनाह से चेहरा भी बद शक्ल हो जाता है। जितने गुनहगार हैं कितने रंग बुरा हम क्या होता है, मानव बरसती चेहरे का संस्कार होता है, और काला ही आदमी क्यों न हो चेहरा, लेकिन रंग काला हो सांवला हो, लेकिन अगर वो अल्लाह ताला का आशिक है, ताकि बुरा रंगा वाला है, उसके चेहरे पर आप नूर आएंगे। फिलहाल हमशी के चेहरे पर कैसा नूर था बोलो, ऐसा नूर था जिसके अकबर ने अपने गोरे रंग का यहूदी गुलाम दे दिया उसको, और उस यहूदी जिनके कब्जे में ये थे बिलाल हफ्शी, उस मुनासिब से कहा क्या है काफिर कमबख्त मुशरिक है, बिलाल हफ्शी को इसलिए सताता है तू कि ये ईमान लाए अल्लाह और रसूल पर, काले हैं लेकिन मैं गोरा गुलाम, गोरे रंग का सफेद खाल वाला है, काला दिल वाला गुलाम मेरे यहूदी, और इसके बदले में मुझे बिलाल हफ्शी दे दे, लिहाजा सौदा हो गया, बिलाल हफ्शी ले आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने काला दिल और सफेद खाल वाला गुलाम देकर बिलाल हफ्शी को लाया हूँ, जिनकी खाल तो काली है मगर दिल सूरज चांद से ज्यादा रोशन है और मुनीर है, खुद नूर वाले नहीं बल्कि रोशन करने वाला शख्स है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, सिद्दीक अकबर के साथ बिलाल हफ्शी को जब देखा छोड़ा के ले आए तो आप खड़े होकर आपने सीने से लगा लिया। मारूफ फरमाते हैं कि मुस्तफा अक्सर कनारस टू कशी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको सीने से लगाया, मनसिकों ने जानस से लज्जत कशीर, मैं कह नहीं सकता कि बिलाल की चार में उसको क्या मजाक रखा होगा, जब सैयदुल अंबिया पैगंबर वक्त सीने से लगा ले किसी उम्मती को तो दोस्तों क्या मजा आता है। आज अगर हमें कोई आलिम, कोई बुजुर्ग, कोई अल्लाह वाला अपने सीने से मारता करता है, जान में क्या वस्त आ जाता है, क्या रूह खुश होती है। क्योंकि बिलाल हफ्शी महार बनाते हैं कि मुस्तफा अजर कनारस की बशीर, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जब बाबा सीने से बांधा फरमाया, मन से गोए जानस के लज्जत कशीर, मैं नहीं कह सकता कि उसकी जान को क्या मजा आया। तो इसीलिए फरमाया अल्लाह ऋषि रहमतुल्लाह ने कि देखो किस तरीके से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने हुस्न को, अपने हुस्न का सौदा अल्लाह के गजब और कहर और नाफरमानी से नहीं किया, ऐ खाने की तकलीफ को बर्दाश्त कर लिया। लिहाजा अल्लाह ऋषि नसीहत करते हैं इस आयत की तफसीर में कि मन हसन अल्लाह खल्क़हु, जिसको अल्लाह ने हसीन पैदा किया हो, फला युसव्विहु बिलमासियत, वो नाफरमानी से अपना चेहरा खराब न करे। यादव को हर गुनाह से चेहरा उसके मुख खत्म जाता, नानत बरसती, अल्लाह की नानत को होते हुए सब हुस्न खत्म हो जाता। अगर कसीमल उम्मत मौलाना शफी साहब खानी रहमतुल्लाह अलैह बताते हैं कि देखो अंधेरे से निकाल कर, गुनाहों के अंधेरों से निकाल कर हिदायत के नूर की तरफ लाना अल्लाह का काम है। अल्लाह वलीउल्लज़ीना आमनू युख्रिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, लेकिन समझते हैं दूसरी आयत में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से کہ آخر اس قوم کا میں ظلمات علم ہو اے موسیٰ اپنی قوم کو اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لائیے، گمراہی کے اندھیرے سے نکال کر ہدایت کے نور میں لائیے، تقوی کے نور میں لائیے۔ تو حضرت کی ملومت مسائل سلوک میں فرماتے ہیں، یعنی اس آیت سے حضرت نے ایک تصوف کا ایک مسئلہ بیان فرمایا کہ دیکھو اندھیرے سے نکالنا اللہ نے اپنی طرف نسبت کیا ایک آیت میں، اور دوسری آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کیا۔ تو معلوم ہوا حضرت فرماتے ہیں کہ فی ہے دلیل ان للشیخ دخلا عظیما ان یخرج المریدین من الظلمات الى النور۔ حضرت فرماتے ہیں حقی علومت اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ شیخ کو اللہ تعالیٰ دخل عظیم عطا کرتے ہیں اپنے طالبین و مریدین کو گمراہی کے ظلمات سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے نور میں لانے کے لیے۔ لو بھائی دیکھو یہ بیان القرآن حقیم علومت کا کیا اللہ نے مقام دیا تھا، اس آیت سے نکالا آخر اس قوم کا بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کیوں فرمانا۔ اور حضرت نے ایک باتیں بھی فرمائی کہ لا تصویر آئے ہوں لوگ، حضرت یوسف علیہ السلام نے جو فرمایا کہ اے بھائیو تم پر کوئی آج پکڑ نہیں، میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ اس آیت کے ذیل میں حکیم الامت نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ صوفیوں کو چاہیے، صالحین کو چاہیے کہ اگر کسی سے ان کو غم، پریشانی، اذیت، تکلیف پہنچ جائے اور وہ معذرت کرے تو فوراً ان کو معاف کر دو، ورنہ پھر مخلوق کے جھگڑوں میں لگ جاؤ۔ لہذا حکیم الامت نے علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ کا قول شاہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے نقل کیا روح المعانی کے حوالے سے، فرماتے ہیں اسی آیت کے ذریعے میں لا تصویر والے کو یوم سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ من نظر الی الخلق بعین الحق، جو اللہ کی مخلوق کو اللہ کی نظر سے دیکھتا ہے، یہ مخلوق کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، سب وہاں سے ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں لم یعبا بمخاصمۃ الناس، تو مخلوق کی لڑائیوں کا پرواہ نہیں کرتا، مخلوق میں الجھتا نہیں، معاف کر دیتا۔ وہ من نظر آئے گئے ہیں بیائے گئی، اور جو مخلوق کو اپنی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف نظر سے نہیں دیکھتا۔ تو فرماتے ہیں اپنا یا مہو، اپنے زندگی کے دن کو غارت کر دیتا ہے بے مخالفت ہیں مخلوق کے مخالفت میں، یعنی سارا دن اس کا مخلوق کے جھگڑوں میں رہتا ہے۔ اللہ میاں کے لیے وہ دل کہاں فائر ہے، خالق کے لیے وہ قلب کہاں فائر ہے جو مخلوق کے جھگڑوں میں پھنسے۔ دیکھیے آپ مسائل تصور کی مرمت کے لیے بیان قرآن اور قرآن کی آیات سے خارج کی۔ تو حضرت کی مرمت کا مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تقویٰ کا راستہ اور اللہ سے ڈر کا راستہ، یہ جب تک صحبت نہ ملے اس وقت تک مشکل، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے۔ تو دوستو میں عرض کر رہا ہوں کہ تقویٰ والی زندگی جنت کی زندگی۔ میں تو خواجہ صاحب کے شعر پر قربان تھا کہ میں دن رات رہتا ہوں جنت میں گویا، لو بھائی دنیا کی زندگی میں اللہ والے جنت میں رہتے ہیں، میں دن رات رہتا ہوں جنت میں گویا، میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں۔ حکیم الامت تھانی فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈر کے رہتا ہے تو سکون قلب و اطمینان قلب کی زندگی اسے عطا ہوتی ہے، اور جو گناہوں میں اور نافرمانیوں میں مبتلا رہتا ہے اس کے قلب میں ہر وقت پریشانی خوف رہتا ہے۔ تو یہ بات تو میں نے اس کو سمجھا، لیکن مجھے علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر الرحمانی میں وہ جو آیت ہے ولیمن خاف مقام اگر دہی جنتان، اللہ اپنے ڈرنے والوں کو دو جنت عطا کرے گا، اس کی تین چار تفسیریں علامہ علوسی نے بیان کی۔ نمبر ایک کہ ایک جنت تو ملے گی ایمان سے، بے عقیدت ہی اس کے عقیدہ درست ہونے سے، دوسری جنت ملے گی لعمل ہی اس کے عمل کو، اور دوسری تفسیر یہ کی کہ ایک جنت ملے گی لتا آتے ہی اس کی عبادت کی برکت سے، دوسری جنت ملے گی لتر کے معاشی ہے لتر کے معاشی آتے ہوئے گناہوں کے چھوڑنے کی وجہ سے، اور تیسری تفسیر جو انہوں نے بیان کی وہ صاحب وہ تو بہت مزیدار ہے۔ اور صاحب تیسری تصویر سننے آپ کو مزہ آ جائے گا۔ ہم لوگوں کو یہ خیال ہوتا تھا کہ جو ہمارے دوست احباب جن سے اللہ کی محبت ہے جب جنت میں سب جمع ہوں گے انشاءاللہ تعالی، تو یہ ہمارے دوست لوگ جو ہیں اب ہزاروں گھروں میں بیٹھے ہوئے تو پتہ نہیں چھوڑ کے ہم سے بات بھی کریں گے یا نہیں، اور وہاں جگہ بھی ہوگی ان کو ہٹانا ہٹانا پڑے گا۔ لیکن کل ہم نے جو تفسیر علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ کی تیسری دیکھی، فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو دو جنت عطا ہوگی، لمن ولیمن خاف مقام ربی، اللہ سے ڈرنے والوں کو دو جنت عطا ہوگی۔ اس کی تفسیر علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ جنت جنت لنفس ہی جنت لنفس سے ہی واحباب ہی ایک جنت ملے گی جہاں وہ خود رہے گا اس کے دوست رہیں گے. سن لو بھائی جنت لنفس سے ہی واحباب ہی اپنے لیے اپنے دوستوں کے لیے جنت اللہ الگ دیں گے. وہ جنت لازواج ہی و خدم ہی اور اپنی بیویوں کے لیے اور نوکروں کے لیے جنت اللہ دوسری دے گا. ارے میرے تم خوشی کی انتہا ہے جب میں فراز صاحب سے انشاءاللہ ملوں گا تو فراز صاحب الگ ملیں گے ہم کو کہ نہیں صاحب ہٹاؤ بچاؤ قرضہ کراؤ یہ کرو. ارے بڑا مزہ آیا اتنا مزہ آیا میں نے کہا الحمدللہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا تھا کہ جب سے مجھے یہ خبر ملی کہ جنت میں دوستوں کی ملاقات ہوگی تو مجھے جنت کا شوق بڑھ گیا. سبحان اللہ. ارے جس کے سینے میں دل اور جس کے دل میں محبت ہو اس کو اس کا مزہ آئے گا کہ اللہ کے دو محبت سے اللہ کے لیے ملنے میں کیا مزہ آتا ہے. لہٰذا سر تو مجھے ایسا دکھایا الحمد للہ واہ. اچھا پھر ملا علی قاری نے صاحب کی جو تفسیر کی بیان کی وہ یہ قاضی ہے انہوں نے تو خواجہ صاحب کی تائید کر دی اور ہمارے بزرگوں کی تائید کر دی. فرماتے ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وقال بعض العارفین اور بعض عارفین نے صاحب کی تفسیر یہ بیان کی جنت الفی دنیا جنت الفی رقبہ یعنی نیک عمل کرنے کی برکت سے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے کے سطح میں تقویٰ کی برکت اگر ہو جائے خوف اللہ کا آ جائے گناہ چھوڑ دے گناہ چھوڑ چھوڑ دے گناہ نافرمانی کا زہر نہ پیے تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کی جنت دے دیتا ایک جنت دنیا ہی میں دے دیتا ہے. کیا مطلب سکون قلب سے حیات طیبہ کی زندگی اسے ادا ہوتی. یہ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ سناتے ہیں کہ خال باز العارفین غلیمن خاص مقام رب ہی جنتان کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جنت الفی دنیا و جنت الفی العقبہ جو خالد صاحب کی وہ بالکل اس شعر کی تائید ہوئی کہ میں دن رات رہتا ہوں جنت میں گویا میرے باب دل میں وہ گلکاریاں. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جس کو ذرا بھی ذوق ہو تھوڑا سا دل میں سلامتی ہو تو اس کو گناہ سے بہت دل خراب ہوتا ہے بہت غم ہوتا ہے. لیکن جس کے گھر میں پہلے ہی سے اندھیرا ہوں اس کے ہاں بجلی اگر فیوز ہو جائے اڑ جائے خراب ہو جائے تو اندھیرے گھروں میں اندھیرا آ جائے تو پھر کیا ہوگا پریشانی نہیں ہوتی کم ہوتی پریشانی ہی نہیں ہوتی. لیکن جو اللہ اللہ کر رہے ہیں ذکر اللہ کا التزام کرتے ہیں بزرگوں کی صحبتوں میں آتے جاتے ہیں ان سے جب گناہ ہو جاتا ہے تو ان کے دل میں بہت پریشانی آتی ہے. اسی لیے اہل اللہ کے صحبت یافتہ اور ذکر اللہ کے دوام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دورہ دے دیتا ہے. کیونکہ جب دل پریشان ہوتا ہے تو مشکل جاتا ہے تو یہ مجبور ہو کر آ جاتے ہیں یعنی خدا تعالیٰ کے محبت کے مجبور محبت ہو کر آ جاتے ہیں بھاگ نہیں سکتے. ہاں نسبت اسی کا نام ہے نسبت اسی کا نام ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائے گی پھر بھاگ نہیں سکتے آپ کیونکہ اللہ اللہ کرنے کی برکت سے جو دل کو نور اور روشنی مل گئی ہے اور اہل اللہ کی صحبت سے دل میں نور آ گیا اب گناہ سے جو اندھیرا آئے گا بجلی فیول ہوگی تو بولو کیا ہوگا غم آئے گا پریشانی ہوگی جلدی سے توبہ کر کے اللہ کو راضی کرو گے.